शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। नमस्कार, मैं पूजा प्रसाद आज न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में लेकर आई हूँ परंपरा भंजक तेवर वाले कवि सुदामा पांडे धूमिल की कुछ कविताएं। अभी जो कविता आपने सुनी उसका शीर्षक था लोहे का स्वाद। माना जाता है कि यह उनके जीवन की अंतिम कविता है। अगर यह सच है तो कहना पड़ेगा कि जाते जाते धूमिल हमें एक गहरी बात कह गए। कितना सही कहा है ना कि सही आदमी की पहचान करो फिर उससे अपने सवाल करो। धूमिल को यथार्थवादी कवि माना जाता है। उनकी कविताओं में भरपूर तलखी है, व्यवस्था और समाज के प्रति विद्रोह है। लेकिन यह तलखी हो या विद्रोह कहीं से भी आसमानी या हवा हवाई नहीं है। आइए उनकी अगली कविता सुने जिसका शीर्षक है उस औरत की बगल में लेटकर। मैंने पहली बार महसूस किया है कि नंगापन अंधा होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। उस औरत की बगल में लेटकर मुझे लगा कि नफरत और मोमबत्तियां जहां बेकार साबित हो चुकी हैं और पिघले हुए शब्दों की परछाई किसी खौफनाक जानवर के चेहरे में बदल गई है, मेरी कविताएं अंधेरा और कीचड़ और गोश्त की खुराक पर जिंदा हैं। वक्त को रगड़ कर मिटा देने के लिए सिर्फ उछलते शरीर ही काफी नहीं है, जबकि हमारा चेहरा रसोई घर की फूटी पतीलियों के ठीक सामने है और रात उस वक्त रास्ता नहीं होती जब हमारे भीतर तरबूज कट रहे हैं, मगर हमारे सिर तकियों पर पत्थर हो गए हैं। उस औरत की बगल में लेटकर मैंने महसूस किया कि घर छोटी छोटी सुविधाओं की लानत से बना है जिसके अंदर जूता पहनकर टहलना मना है। यह घास है यानी कि हरा डर जिसने मुझे इस तरह सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त यह सोचना कितना सुखद है कि मेरे पड़ोसियों के सारे दांत टूट गए हैं, उनकी जांघों की हरकत पाला लगी मटर की तरह मुरझा गई है, उनकी आंखों की सेहत दीवार खा गई है। उस औरत की बगल में लेटकर जब अचानक बुझे हुए मकानों के सामने दमकलों के घंटे चुप हो गए हैं, मुझे लगा है कि हांफते हुए दलदल की बगल में जंगल होना आदमी की आदत नहीं अदना लाचारी है। और मेरे भीतर एक कायर दिमाग है जो मेरी रक्षा करता है और वही मेरी बटनों का उत्तराधिकारी है। दोस्तों, धूमिल जैसे कवि की कभी मौत नहीं होती, भले ही उनकी आयु 38 वर्ष की उम्र में रुक गई हो। वैसे उनका जन्म 9 नवंबर 1936 को वाराणसी के खेवली गांव में हुआ था। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। उन्होंने अंतिम सांस 10 फरवरी 1975 को ली। 7वें दशक में उनका लेखन चरम पर था। इस दौर के अधिकतर रचनाकार मोहभंग की पीड़ा से गुजर रहे थे। उनके निधन के 4 साल बाद उन्हें साहित्य अकादमी का सम्मान मिला। आइए सुने उनकी अगली कविता कुत्ता। उसकी सारी शख्सियत नखों और दांतों की वसीयत है। दूसरों के लिए वह एक शानदार छलांग है। अंधेरी रातों का जागरण है, नींद के खिलाफ नीली गुर्राहट है। उसकी सारी शख्सियत नखों और दांतों की वसीयत है। दूसरों के लिए वह एक शानदार छलांग है। अंधेरी रातों का जागरण है, नींद के खिलाफ नीली गुर्राहट है। अपनी आसानी के लिए तुम उसे कुत्ता कह सकते हो। उस लपलपाती हुई जीभ और हिलती हुई दुम के बीच भूख का पालतूपन हरकत कर रहा है। उसे तुम्हारी शराफत से कोई वास्ता नहीं है। उसकी नजर ना कल पर थी ना आज पर है। सारी बहसों से अलग वह हड्डी के एक टुकड़े और कौर भर सीझे हुए अनाज पर है। साल में सिर्फ एक बार अपने खून से जहर मोहरा तलाशती हुई मादा को बाहर निकालने के लिए वह तुम्हारी जंजीरों से शिकायत करता है। अन्यथा पूरा का पूरा वर्ष उसके लिए घास है। उसकी सही जगह तुम्हारे पैरों के पास है। मगर तुम्हारे जूतों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी नज़र जूतों की बनावट नहीं देखती और ना उसका दाम देखती है। वहाँ वह सिर्फ बित्ता भर मरा हुआ चाम देखती है और तुम्हारे पैरों से बाहर आने तक उसका इंतज़ार करती है पूरी आत्मीयता से। उसके दांतों और जीभ के बीच लालच की तमीज़ जो है तुम्हें जायकेदार हड्डी के टुकड़े की तरह प्यार करती है। और वहाँ हद दर्जे की लचक है, लोच है, नरमी है, मगर मत भूलो कि इन सबसे बड़ी चीज़ वह बेशर्मी है जो अंत में तुम्हें भी उसी रास्ते पर लाती है जहाँ भूख उस वहशी को पालतू बनाती है। दोस्तों जानते हैं पाश और धूमिल दोनों के स्वर बेहद तल्ख हैं, पर दोनों के बीच बड़ा फर्क यह दिखता है कि पाश की निगाह में बीच का रास्ता नहीं होता, जबकि धूमिल की कविताएं भूख से समझौता कर किसी वहशी के पालतू बनने का बयान करती हैं। उनकी अगली जो कविता पढ़ने जा रही हूँ वह है शहर का व्याकरण। आप गौर कीजिएगा कि इस कविता में भी एक समझौतावादी रुख दिखेगा। शहर का व्याकरण ठीक करने के लिए एक हल्ला गाड़ी गश्त कर रही है। चुनाव के इश्तेहार से निकलकर एक आदमी सड़क पर आ गया है। आसमान में सन्नाटा छा गया है। शाम के 7 बजे हैं। भाषा के चौथे पहर में मैं प्रभु हूँ का चेहरा उतार कर वह विदूषक उस शोकेस के सामने खड़ा है जिसमें जूते पान की गिलौरियों की तरह सजे हैं और एक रर्रा विदेशी पर्यटक का पीछा कर रहा है। उसकी जुबान पर अपने यहाँ गाए जाने वाले जंगल गीत का प्यारा सा छंद है। आगे सड़क बंद है, लाल बत्ती जल रही है, फरमाइशी गीतों की परिचित आवाज में सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बुलंद है। आज हर चीज एक नाम है, लोगों की सुविधा के लिए बनिया सच्चाई है, यह महंगाई है जिसने बाजार को चकमा दिया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और खुश हैं कि भीड़ सुख पा रहे हैं। मगर सुनो, तुमने अपने कुत्ते को दिन में क्यों खोल दिया है? इसके पहले कि वह पकड़ लिया जाए और चीर फाड़ की किसी धारणा को साबित करते हुए अस्पताल में हलाल हो, अगर तुम उसे नगर पालिका की नजर से बचाना चाहते हो, उसके गले में एक पट्टा डाल दो। सचमुच मजबूरी है, मगर जिंदा रहने के लिए पालतू होना जरूरी है। और अब चलते चलते धूमिल की एक लंबी कविता का छोटा सा अंश साझा कर रही हूं। कविता क्या है? कोई पहनावा है? कुर्ता पाजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या यह व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो दोस्तों, भाषा को पूरी तमीज से बरतने वाले और बेकसूर आदमी का हलफनामा लिखने वाले कवि धूमिल की कविताओं की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी किसी और रचनाकार की रचनाओं के साथ। तब तक के लिए पूजा को दें विदा। नमस्कार।